Yeah. शब्दार्थ यह श्रीमतः इन कथाओं को सुनने वाले का अपैते दूर हो जाता है और ते अनाकर्षण वेतृष्णा मन के भीतर का मैल जो हमें कृष्ण भावनामृत में अरुचि उत्पन्न कराता है। सत्वं च हृदय के भीतर अस्तित्व शुद्धते शुद्ध बनाता है। अचिरेणा तुरंत पुंसहा किसी भी व्यक्ति का भक्ति हरो भगवान के प्रति भक्ति तत्पुरुषे वैष्णवों के साथ भी सख्या संगति के लिए आकर्षण तत्व केवल वह हार भगवान के कार्यकलाप जिन्हें सुनना चाहिए और गले में माला के समान रखना चाहिए। वदह कृपा करके कहे मन्य से आप उचित समझते हैं। चेतः यदि अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद के तो अनुवाद दोनों श्लोकों का पढ़ूंगा एक साथ। राजा परीक्षित ने कहा हे प्रभु शुकदेव गोस्वामी भगवान के अवतारों द्वारा प्रदर्शित विविध लीलाएं निश्चित रूप से कानों को तथा मन को सुहावनी लगने वाली है। इन लीलाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य के मन का मैल तत्क्षण धुल जाता है। सामान्यतया हम भगवान की लीलाओं को सुनने में आनाकानी करते हैं किंतु कृष्ण की बाल लीलाएं इतनी आकर्षक है कि वे स्वतः ही मन तथा कानों को सुहावनी लगती हैं। इस तरह भौतिक वस्तुओं के विषय में सुनने की अनुरक्ति जो भवबंधन का मूल कारण है समाप्त हो जाती है। मनुष्य में धीरे धीरे भगवान के प्रति भक्ति एवं अनुरक्ति उत्पन्न होती है और भक्तों के साथ जो हमें कृष्ण भावनामृत का योगदान देते हैं मैत्री बढ़ती है। यदि आप उचित समझते हैं तो कृपा करके भगवान की इन लीलाओं के विषय में कहें। तात्पर्य जैसा कि प्रेम विवर्त में कहा गया है कृष्ण बहिर्मुख हैया भोग वांछा करे निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। हमारा भौतिक जगत माया है जिसमें हम तरह तरह के भौतिक भोगों की अभिलाषा करते हैं इसलिए हम तरह तरह के शरीर धारण करते हैं। भ्रामयान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया असन्नपि क्लेशद आस देह। जब तक हमारे ये नश्वर देह रहेगी तब तक अनेक प्रकार के आध्यात्मिक आदिभौतिक तथा आदिदैविक क्लेश मिलते रहते हैं। सारे कष्टों का मूल कारण यही है जिसे कृष्ण भावनामृत को जागृत करके ही दूर किया जा सकता है। इसलिए व्यासदेव तथा अन्य मुनियों द्वारा समस्त सारा वैदिक साहित्य हमें कृष्ण भावनामृत को जागृत करने के उद्देश्य से लिखा गया है। यह श्रवणम कीर्तन के जागरण से प्रारंभ होता है। श्रृण्वताम सो कथा कृष्ण श्रीमद् भागवतम तथा अन्य वैदिक ग्रंथ केवल कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए अवसर प्रदान करने के निमित्त है। कृष्ण के विभिन्न अवतार हैं वे सभी अद्भुत हैं अतएव वे हमारे उत्कंठा को जागृत करने वाले हैं किंतु मत्स्य कूर्म तथा वराह जैसे अवतार कृष्ण के समान आकर्षक नहीं है क्योंकि सर्वप्रथम हमें कृष्ण के विषय में सुनने के लिए कोई आकर्षण नहीं होता इसलिए ये हमारे कष्टों की जड़ बन जाता है। किंतु परीक्षित महाराज विशेष रूप से उल्लेख करते हैं कि बाल कृष्ण की अद्भुत लीलाएं जो माता यशोदा तथा अन्य ब्रजवासियों को विस्मित करने वाली थी विशेष रूप से आकर्षक है। कृष्ण ने अपने बाल्यकाल से ही पूतना तृणावर तथा शक्तासुर का वध किया और अपने मुख के भीतर समूचा ब्रह्मांड दिखलाया। इस तरह एक एक करके कृष्ण की लीलाएं माता यशोदा तथा समस्त ब्रजवासियों को अत्यंत आश्चर्यचकित करती रहे। कृष्ण भावनामृत को जगाने की विधि है आदो श्रद्धा तथा साधु संग। कृष्ण की लीलाएं भक्तों से उचित रूप से सुनी जा सकती है। यदि वैष्णव से कृष्ण लीलाओं के विषय में श्रवण करके थोड़ी सी भी कृष्ण भक्ति उत्पन्न की जा सके तो वैष्णव के प्रति अनुरक्त हुआ जा सकता है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत में ही रुचि रखते हैं। इसलिए परीक्षित महाराज मनुष्यों के लिए संस्तुति करते हैं कि वे कृष्ण की बाल लीलाओं को सुने, क्योंकि ये लीलाएं मत्स्य कूर्म वराह आदि अवतारों की लीलाओं की अपेक्षा अधिक आकर्षक है। सुखदेव गोस्वामी से अधिक अधिक सुनने की इच्छा से महाराज परीक्षित ने उनसे अनुरोध किया कि वे कृष्ण की बाल लीलाओं का आगे वर्णन करें, क्योंकि वे सुनने में सरल है तथा अधिक अधिक उत्सुकता जागृत करने वाली है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे। यशुन्मतो पैत्यरतिर्वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्यादिचिरेण पुंसा भक्तिर्हरो तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हरं वदमन्यसे तत्। ये लाइट ऑन रख सकते हैं क्या मुझे नोट्स देखने के लिए? हरे कृष्णा। तो जन्माष्टमी नजदीक आ रही है तो उस उपलक्ष्य में कृष्णा की जन्माष्टमी महोत्सव के लिए अलग अलग तैयारियां की जाती हैं। तो शास्त्र कहते हैं कि कई प्रकार की तैयारियां हैं, और जिस प्रकार से हम सुनते हैं कि एक तैयारी है बाहरी रूप से, जिसको कह सकते हैं बहिरंगा, रंगा मीन्स कलरफुल, और दूसरी तैयारी है अंतरंगा, मतलब दोनों जगहों में रंग की आवश्यकता है तैयारियों में। तो बाहरी जो तैयारी है वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण तैयारी है अंतरंग तैयारी। और अंतरंग तैयारी इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारा जो हृदय है वो वास्तव में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कोयले से भी अधिक काला है। और जन्माष्टमी का मतलब है कि कृष्ण को उचित रूप से हमें अपने जीवन में स्वीकार करना, जिस प्रकार से महान महान भक्तों ने कृष्ण को अपने जीवन में स्वीकार किया। और दूसरा ये भी अर्थ है कि हमें अपने हृदय को इस प्रकार से बनाना होगा कि जिसके द्वारा कृष्ण आकर उस हृदय में निवास कर सकते हैं। और फिर यदि हमारे हृदय की तैयारी अच्छी है तो फिर कृष्ण बाहर की किसी भी प्रकार की तैयारी हो, चाहे उसमें कुछ कमियां भी क्यों ना हो, कृष्ण उसको आनंद से स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार से शबरी के जीवन में देखते हैं, वो तैयारियां करते थे लेकिन उसका जो प्रेम की भावना है भगवान राम स्वीकार करते हैं और उसको अपना कृपा विशेष रूप से प्रदान करते हैं। अभी वसुदेव और देवकी के जीवन में देखा जाए वो भी जन्माष्टमी की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन बाहरी तैयारी कहां थी? जेल, जहां किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं थी, लेकिन वास्तव में कृष्ण एग्री हो गए आने के लिए, प्रकट होने के लिए, क्योंकि वसुदेव और देवकी का जो हृदय है वो उचित रूप से सुसंपन्न था या कलरफुल था, वो कृष्ण को रिसीव करने के लिए। इसी कारण से शास्त्र कहते हैं कि चाहे जैसे भी हो, जन्माष्टमी का असली अर्थ है कि आने वाले दिनों में हमें अपने हृदय को इतना अधिक सुनिर्मल बनाने का प्रयास करना चाहिए कि कृष्ण स्वाभाविक रूप से उसमें निवास करें। श्रील प्रभुपाद ने भी जब म्लेच्छ देशों में विग्रह की स्थापना की, म्लेच्छ देशों में क्या है बाहरी रूप से सुव्यवस्था, लेकिन प्रभुपाद का हृदय, प्रभुपाद की भावना को जब कृष्ण ने देखा तो कृष्ण वहां विग्रह के रूप में प्रकट होने के लिए तैयार हो गए। और वास्तव में पूरे विश्व में कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। तो कैसे ये संभव हो सकता है? ये तभी संभव हो सकता है जब वास्तव में एक भक्त उचित रूप से विनम्रता की भावना से उत्कंठित होकर कृष्ण की इन कथा उनका क्या करें, निरंतर श्रवण करने का प्रयास करें। और ऐसी जो उत्कंठता है वो महाराज परीक्षित ने अपने जीवन में दिखाई, और ऐसे कृष्ण कथा का जो भंडार है वो वास्तव में श्रीमद् भागवतम है। और ऐसे श्रीमद् भागवतम जो कृष्ण कथा का अमृत है, हमारे जीवन में हम देखें तो हमारी जो भावनाएं हैं वो मृत हो रही हैं, मरने लगी हैं, लेकिन ये पुनः जीवित हो सकती है श्रवणादि शुद्ध चित्ते कराय उदय। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यदि एक भक्त उचित रूप से भगवान के बारे में गंभीरता से श्रवण करता है तो निश्चित रूप से उसकी जो मृत चेतना है वो जागृत हो सकती है, और उसी को कहा जाता है कृष्ण भावना मृत। अभी कृष्ण भावना मृत हो गई है, लेकिन कृष्ण भावना अमृतमय हो सकती है। कब? जब कृष्ण कथामृत का निरंतर वैष्णवों के मुख से श्रवण किया जाए। चाहे हम अपने जीवन में जो भी करते हैं, लेकिन यदि हम अपने जीवन में कृष्ण का गुणगान नहीं करते तो हम सदैव असंतुष्टि महसूस करेंगे। सदैव किसी भौतिक चीजों के लिए हमारे हृदय में लालसा बनी रहेगी। इसी कारण से व्यास देव के जीवन में भी देखते हैं, इतना सब कुछ उन्होंने किया, इतने ग्रंथों की रचना की, इतने लोगों को उपदेश दिया, लेकिन फाइनली उन्होंने सोचा मेरे हृदय में कुछ कमी है, मैं संतुष्टि अनुभव नहीं कर पा रहा हूं जो मुझे अनुभव होनी चाहिए। तब उन्हें श्लोक याद आया, किं वा भागवतः धर्मा न प्रायेण निरूपितः प्रिया परमहंसानां तयैव अच्युत प्रिया। मेरी कमी क्या है? मैंने एक कमी है मेरे जीवन में कि कृष्ण का मैंने उचित रूप से गुणगान नहीं किया है, निरूपण नहीं किया है भागवत धर्म का जो परमहंस भक्तों के लिए प्रिय है और स्वयं अच्युत कृष्ण के लिए भी उतना ही अधिक प्रिय है। इसी कारण से जो वैष्णव गण है वो किसी से सर्वाधिक प्रेम रखते हैं तो वो श्रीमद् भागवतम से, क्योंकि भागवतम एकमेव कृष्ण का गुणगान करता है। इसलिए भागवतम के आखिरी श्लोकों में वर्णन आता है, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानां प्रियम। चैतन्य महाप्रभु जब भागवतम के बारे में बोला करते थे तो महाप्रभु कहते थे भागवतम अमल पुराण है, इसमें किसी भी प्रकार का मल नहीं है, और जो भी व्यक्ति अपने जीवन को भी अमल बनाना चाहता है उस व्यक्ति को श्रीमद् भागवतम को उतना ही गंभीरता से स्वीकार करना होगा जितना गंभीरता से हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने इसे स्वीकार किया। प्रभुपाद एक तात्पर्य में कहते हैं, इस भौतिक ये जो पीड़ित मानवता है उसके लिए रामबाण औषधि कोई है? इस संसार से मुक्त होना और कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना को जागृत करने के लिए है, तो वो कहते हैं ये श्रीमद् भागवतम है। इसी कारण से व्यास देव ने कहा यशा वैश्य मानानाम, कहते कि इसका श्रवण करने मात्र से क्या होगा, भक्तिर उत्पते पुंसः, कि कृष्ण के प्रति हृदय में भक्ति की भावना जागृत हो जाती है। तो ऐसे श्रीमद् भागवतम वास्तव में वो परम औषधि है जिसका वर्णन परीक्षित महाराज ने स्वयं अपने मुख से किया था। प्रभुपाद एक लेक्चर में लॉस एंजलिस में लेक्चर दे रहे थे, तो प्रभुपाद कहते हैं कि हमें सबको तो परीक्षित महाराज का स्थान लेना होगा। कैसे स्थान लेना होगा? प्रभुपाद कहते हैं कि परीक्षित महाराज ने शुकदेव गोस्वामी के द्वारा भागवतम को सीखा 7 दिनों में और उन्होंने अपने अगले जीवन की तैयारी की। उसी प्रकार से हमें भी अपने अगले जीवन की तैयारी करनी होगी, तो हमें श्रीमद् भागवतम को सीखना होगा। तो उससे क्या होगा कि हम सरलता से कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं और यही उन्नत चेतना का एकमात्र कर्तव्य है, प्रभुपद अपने एक लेक्चर में कहते हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु से लेकर श्रील प्रभुपद के जीवन में भी देखें तो हमें अनुभव करते हैं कि भागवतम कितना अधिक प्रिय था। श्रील प्रभुपद जब अमेरिका जाने के लिए निकल पड़े तो उन्होंने सर्वप्रथम श्रीमद् भागवतम को लेकर निकले अपने साथ, या सर्वप्रथम किसी ग्रंथ का अनुवाद शुरू किया। प्रभुपाद तो पहले मैगजीन्स प्रिंट करते थे बैक टू गॉडहेड, तो लाइब्रेरी में, दिल्ली के लाइब्रेरी में जब पहुंचे तो उस लाइब्रेरियन ने कहा, अरे स्वामी जी ये सारे पेपर्स और मैगजीन्स आप छापते हो, ये लोग पढ़ते हैं और फेंक देते हैं, कुछ ऐसा ठोस निर्माण करो, ग्रंथ निर्माण करो, पुस्तक छापो। तो प्रभुपाद ने फिर वो बुक बनाई, अन्य लोगों की सुगम यात्रा, और फिर प्रभुपाद ने भागवतम को शुरू किया राधा दामोदर मंदिर में निवास करते हुए, और भागवतम का अनुवाद किया। उसी भागवतम को अपने साथ ले गए और सारे विश्व को सर्वोत्तम भेंट कुछ प्रदान की, तो श्रील प्रभुपाद ने यह श्रीमद् भागवतम दिया। और हमारे लिए भी सुबह उठते ही सर्वप्रथम हमें किसी ग्रंथ से प्रभुपाद ने इंट्रोड्यूस किया, किसी ग्रंथ के साथ हमें बांध दिया, तो वो श्रीमद् भागवतम है। और ऐसा भागवतम व्यास देव का परिपक्व अवस्था में जो प्रकट हुआ है, कृष्ण से अभिन्न विग्रह है। जीव गोस्वामी कहते हैं कि कई सारे पुराण हैं, लेकिन भागवतम वास्तव में महापुराण है। पुराणों में जो गौण पुराण होते हैं उनमें लगभग 5 विषयों का वर्णन होता है, या कई पुराणों में 10 विषयों का भी वर्णन है, लेकिन उन पुराणों में इन 10 विषयों का वर्णन स्वतंत्र रूप में है। लेकिन भागवतम की विशेषता क्या है? वो कहते भागवतम को महापुराण बताया गया है, इसकी विशेषता है कि 9 विषयों का वर्णन करके जिसको जिसके द्वारा दशम जो विषय है भागवतम का आश्रय कृष्ण, उनका गुणगान करना। ये बाकी 9 विषयों का क्या है, एक प्रकार से विशेषता है या एक प्रकार से कार्य है। तो ऐसा है परीक्षित महाराज श्रीमद् भागवतम को सुनने के लिए अत्यधिक लालायित थे, और उन्होंने लगभग 5.5 दिन श्रीमद् भागवतम के अलग अलग विषयों का, अलग अलग अवतारों का वर्णन जब सुना तो परीक्षित महाराज से रहा नहीं गया। 9वें स्कंद के अंत में शुकदेव गोस्वामी ने कृष्ण का वर्णन करना शुरू किया, लेकिन थोड़ा संक्षिप्त में जा रहे थे। तो 10वें स्कंद के शुरुआत में वो कहते हैं कि ये सारे मनवंतर और अलग अलग अवतार और राजवंश आदि का जो आपने वर्णन किया है वो तो मैंने बहुत सुन लिया, अभी मैं क्या सुनना चाहता हूं, भागवतम के जो हीरो है, भागवतम के जो मेन पर्सनैलिटी है कृष्ण है, उनके बारे में विशेष रूप से सुनना चाहता हूं। और फिर उन्होंने कहा, ऐसे परीक्षित महाराज फिर कृष्ण का वर्णन करने लगे। उन्होंने सोच कहा कि क्यों मैं भागवतम से कृष्ण के बारे में सुनना चाहता हूं। तो ऐसे परीक्षित महाराज कहते हैं कि मैं भागवतम से सुनना चाहता हूं कृष्ण के बारे में, क्योंकि ऐसे कृष्ण क्या है, अवतीर्ण यदोर्वंशे, वो कहते अवतीर्ण यदोर्वंशे भगवान भूत भावना, ऐसे कृष्ण यदुवंश में अवतरित हुए हैं और वास्तव में सारे जीवों के वो प्रेम के विषय है। तो कहते सर्वप्रथम वो ये कारण बताते हैं कि मैं सुनना चाहता हूं क्योंकि कृष्ण मेरे प्रेम के विषय है, कृष्ण के अलावा मेरा प्रेम का विषय कोई और नहीं है। या ये जो भावना है, क्योंकि हम भावना किसी में लगाते हैं जिससे हम प्रेम करते हैं, तो उन्होंने कहा मेरी ये जो भावना है ये वास्तव में कृष्ण के लिए है। और ऐसे कृष्ण के बारे में मैं श्रवण करना चाहता हूँ और उचित रूप से श्रवण करना चाहता हूँ। कोई जल्दी नहीं है, इतना उनका बड़ा अनुभूति है, इतने गंभीरता से सुनने के बाद भी वो कहते हैं मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप बड़े आराम आराम से कृष्ण का मधुरतम गुणगान कीजिए। और ऐसे नहीं कि परीक्षित महाराज, हम देखते हैं जब कोई सेमिनार होता है पूरे दिन का, तो हमें आधा एक घंटा तो बैग ठीक ठाक करने के लिए बाहर भेजा जाता है, लेकिन परीक्षित महाराज ने हु ना छू की, कोई कंप्लेंट नहीं की और उन्होंने कुछ मांगा भी नहीं, डिमांड भी नहीं की। उनकी डिमांड केवल एक ही है, हाँ, कि स्वादु स्वादु पदे पदे, कि आप क्या करो, मैं तृप्त नहीं हो रहा हूं इस कृष्ण कथामृत से, आप इसका वर्णन करते जाओ। और दूसरा कारण वो बताते हैं, हाँ, जो श्लोक है फेमस श्लोक का, जिसमें वो कहते हैं निवृत्त तर्षे उपगीयमानं भव औषधि श्रोत्र मनोभिरामान। वो कहते मैं कृष्ण के बारे में इसलिए सुनना चाहता हूं क्योंकि सारे जीवों के लिए कृष्ण कथा एक परम औषधि है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, परम औषधये भव निवारणे सतत कीर्तन करे भवतीत जने। तो भवतीत जने, इस भौतिक संसार से परे जिनकी चेतना है, ऐसे भक्त क्या करते हैं, सतत कृष्ण का गुणगान करते हैं। उसी को चैतन्य महाप्रभु ने कहा कीर्तनीय सदा हरि। और हम देखते हैं और देखा जाए तो कृष्ण कथामृत ये परम औषधि है। प्रभुपाद के पास दिल्ली में एक व्यक्ति आया, बहुत धनाढ्य व्यक्ति था, और प्रभुपाद से मिला, उनको प्रणाम आदि किया, उनकी थोड़ी प्रशंसा की और प्रभुपाद को कहा स्वामी जी मुझे नींद नहीं आती। तो वो बड़ा उसका व्यापार आदि था, तो प्रभुपाद ने कहा नींद नहीं आती। तो प्रभुपाद ने पूछा क्या क्या चीजें हैं आपके पास। उन्होंने कहा मेरे पास कानपुर में फैक्ट्री है, मेरे पास पंजाब में फैक्ट्री है। तो बहुत सारे फैक्ट्रियों का नाम लिया। प्रभुपाद ने कहा यही कारण है तुम्हें नींद न आने का। तो वहां श्रील गोपाल कृष्ण महाराज बैठे थे, तो उन प्रभुपाद ने कहा गोपाल कृष्णा इनका एड्रेस ले लो। तो जैसे ही कहा तो व्यक्ति डर गया, उसने कहा मैं एड्रेस नहीं दूंगा। तो इस प्रकार से हम औषधि भी चाहते हैं, लेकिन अपने आप को क्या करना चाहते हैं, संकुचित, या अपने आप को अलग से रखना भी चाहते हैं, तो ये औषधि काम नहीं करेगी। तो इस औषधि का पान करना होगा, जैसे भगवान के महान भक्त हमें कहते हैं। इस प्रकार से जब हम करेंगे तो ये कृष्ण कथामृत की औषधि से क्या होगा, सबसे पहले इंद्रिय तृप्ति की जो प्यास है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये प्यास अतोषणीय प्यास है, जिसे कहते हैं इंद्रिय तृप्ति की प्यासे कभी बूझती नहीं है या संतुष्ट नहीं होती। लेकिन कृष्ण कथा की औषधि इतनी सामर्थ्यवान है, कोई व्यक्ति कितना ही पतित क्यों ना हो, यदि इसका सहारा लेता है, आश्रय लेता है, तो उसकी इंद्रिय तृप्ति की प्यास पूर्ण रूपेण बुझ जाती है। और दूसरा क्या होता है, इस औषधि से जो मिथ्या अहंकार की भावना है वो ठीक हो जाती है। और तीसरा कहते हैं कि ये जो मन का एजिटेशन है, हाँ, वो पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो जाता है। तो ऐसे परीक्षित महाराज चाहते हैं कि मैं इस कृष्ण कथामृत को श्रवण करूं, क्योंकि ये वास्तव में परम औषधि है। और वो कहते हैं आगे के श्लोकों में, इस दशम स्कंद के पहले अध्याय में ही तीसरी चीज कहते हैं कि क्यों मैं कृष्ण के बारे में सुनना चाहता हूं, क्योंकि कृष्ण क्या है, मेरे असली प्रोटेक्टर है, मेरे असली रक्षक है। क्योंकि मेरे जो दादा परदादा या मेरे पिता आदि है, उनकी रक्षा कृष्ण ने की है। इतना ही नहीं, उत्तरा के घर में, मेरी माता के घर में मेरी रक्षा किसने की है, कृष्ण ने ही की है। इस कारण से ऐसे जो सुप्रीम पर्सनालिटी कृष्ण है, उनके बारे में है शुकदेव गोस्वामी मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं। और इतनी अधिक उनके अंदर लालसा थी। और चौथी चीज वो कहते हैं आगे के एक श्लोक में कि कृष्ण वास्तव में अंतिम लक्ष्य प्रदान करने वाले हैं, प्रयोजन या प्रेम प्रदान करने वाले हैं। इसी कारण से ऐसे परम भगवान कृष्ण के बारे में मैं निरंतर सुनना चाहता हूं। तो ऐसी लालसा परीक्षित महाराज के जीवन में हमें प्राप्त होती है कि कृष्ण के बारे में वो अधिक से अधिक सुनना चाहते हैं और वो कारण भी प्रस्तुत करते हैं। इसी कारण से श्रील प्रभुपाद ने कहा, इस संसार में हमारे बंधन का कारण शब्द है, शब्द से हम बंधते हैं और ये शब्द ही हमें मुक्त कर सकता है। इसलिए कहते हैं अनावृत्ति शब्दात, जो आध्यात्मिक शब्द है उनकी अनावृत्ति करनी होगी, उनका उच्चारण अपने जीवा से अधिक करना होगा, चाहे हमारे अंदर कितनी ही कमियां क्यों ना हो। और यही एक हमारी औषधि है जो हमें शुद्ध कर सकती है। और इसी श्रेष्ठतम कार्य को परीक्षित महाराज ने अपने जीवन में क्या किया, स्वीकार किया। और परीक्षित महाराज ने फिर आगे चलकर उनसे भगवान के प्राकट्य के बारे में सुना और पहला जो आसुर है पूतनावध की लीला को सुना। और जैसे पूतनावध की लीला को सुना और उसके आखिरी श्लोक में शुकदेव गोस्वामी कहने लगे, सुनया श्रद्धया मर्त्यो गोविंद लभते रति। कोई व्यक्ति ये पूतनावध या कृष्ण की इस विशेष लीला को सुनता है, वो कहते मर्त्य जगत का प्राणी, हाँ मर्त्य है, सुनया श्रद्धया मर्त्य, हम सब म्रियमान है, मर्त्य प्राणी है। जो भी व्यक्ति सुनेगा उसके साथ क्या होगा, गोविंदे लभते रति, गोविंद में रति होगी। लेकिन कमी क्या है, हमारा विश्वास नहीं है। इसी कारण से हम कृष्ण कथा को उचित रूप से सुनना पसंद नहीं करते या सुनना नहीं चाहते हैं। जैसे उन्होंने कृष्ण के इस महान श्रवण का वर्णन किया ग्लोरीज का शुकदेव गोस्वामी ने उस आखिरी श्लोक में, तो अगला जो अध्याय है, जो ये आज का श्लोक है सातवां अध्याय जिसका शीर्षक है तृणावर्त का वध, उसके पहले श्लोक में परीक्षित महाराज से रहा नहीं गया। यदि कोई पूछे राजा परीक्षित, आपने इतना भागवतम को सुना है, आप अपना कुछ आत्म साक्षात्कार बताइए, कुछ अपनी अनुभूति बताइए, तो वो अनुभूति इन दो श्लोकों में परीक्षित महाराज हमारे साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं। और पहले श्लोक में वो कहते हैं एन एन अवतारेन भगवान हरिरीश्वरः, कि जो भगवान हरि हैं, सनातन गोस्वामी कहते हैं कि दुखम पापम चित्तस्य यथा यथा हरति इति हरि। हरि का मतलब है जो दुख को पाप को और हमारे चित्त का भी हरण करते हैं उनको हरि कहा जाता है। कहते कि ऐसे हरि कृष्ण का, इनके अलग अलग अवतारों का वर्णन मैंने सुना आपके द्वारा, वो कैसे हैं? कहते दो चीजें महसूस होती है मुझे सुनने से, करोति कर्ण रम्यानी मनोज्ञानी च प्रभो। ये जो कृष्ण कथा है ये कानों को आनंद देने वाली है और दूसरा मन को खींच लेती है। मन को तो हमारे मन को कितनी भौतिक चीजें खींचती हैं, लेकिन परीक्षित महाराज कहते हैं मनोहरणी, ये कृष्ण लीला मन को हर लेती है, मन को खींच लेती है। ऐसे वो अपना जो साक्षात्कार है शेयर करते हैं और अगले श्लोक में भगवत कथा कृष्ण के विशेष इन बाल लीलाओं को श्रवण करने के छह परिणाम नहीं पांच परिणामों का वर्णन इस आज के श्लोक में वो करते हैं। सर्वप्रथम वो कहते हैं यश सुनमतो अपैत्य रति, अपैत्य का मतलब है कि दूर हो जाता है, यश सुनमता जिसको सुनने से दूर होता है। सबसे पहले क्या दूर होता है, परीक्षित महाराज कहते हैं, वो कहते हैं अपैति अरति, अरति का मतलब है अनाकर्षण, भगवान के बारे में सुनने में हमारा कोई आकर्षण नहीं है। भौतिक चीजों के बारे में, भौतिक व्यक्तियों के बारे में, भौतिक स्थानों के बारे में हमारे हृदय में बहुत लालसा है। तो परीक्षित महाराज कहते हैं ये जो अरति की भावना हमारे हृदय में है वो खत्म हो जाती है यदि हम कृष्ण के इन कार्यकलापों को उचित रूप से सुनते हैं। मतलब भगवान के लीलाओं को सुनने के प्रति जो अनाकर्षण है वो हमारे हृदय से पूर्ण रूपेण उन्मूलन हो जाता है। और दूसरी चीज वो कहते हैं वितृष्णा, विशेष तृष्णा, हमारे हृदय में भौतिक भोग करने के लिए विशेष तृष्णा है, लेकिन जब हम इन कार्यकलापों को सुनते हैं भक्तों के माध्यम से, तो ये भोग करने की जो विशेष तृष्णा है वो हमारे हृदय से खत्म होती है, या फिर जो भगवान के लीलाओं को श्रवण न करने की जो भावना है वो पूर्ण रूपेण खत्म हो जाती है। और तीसरी चीज वो कहते हैं सत्वम शुद्धति। सत्वम शुद्धति का मतलब है कि हृदय के भीतर जो मल है वो तुरंत ही क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि इन सारी चीजों के साथ परीक्षित महाराज ने क्या लगाया है, आचिरेण। आचिरेण का मतलब है क्विकली, ये तुरंत होगा। यदि कोई डिवोटी सरल हृदय से भगवत कथा को सुनने के लिए सबसे प्रमुख योग्यता है हमारे हृदय को सरल रखकर भगवान के इन कार्यकलापों को सुना जाए। तो कहते हैं सत्वम शुद्धति। और पांच चौथी चीज वो कहते हैं हरोर भक्ति, भगवान हरि के प्रति भक्ति की भावना का विकास हो जाएगा, ये वो कहते हैं। और आखिरी वो कहते हैं इतना ही नहीं, वास्तव में देखा जाए सारे समस्याओं का समाधान क्या है, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का अधिक से अधिक गुणगान करना और अधिक से अधिक श्रवण करना। इसलिए प्रभुपाद ने कहा ये जो आंदोलन मैंने बनाया है इसका प्रमुख उद्देश्य यही है, यहाँ भक्त आपस में आकर कृष्ण का गुणगान करें अधिक से अधिक, और उनके गुणगान को सुने और भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करें। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद अपने भक्तों को प्रेरित करते थे। मायापुर में जब वो लेक्चर दे रहे थे तो लेक्चर भागवतम के बीच में जब कुछ लोग डिवोटीज पीछे बैठे थे तो उनको उठाने के लिए कोई टेम्पल अधिकारी आ गए, चलो अभी कुछ महत्वपूर्ण काम है। प्रभुपाद ने व्यास आसन से डांट दिया, कहते भागवतम श्रवण करने से अधिक और क्या महत्वपूर्ण हो सकता है। वैसे उनके पास श्रवण के लिए टाइम नहीं है, उन्होंने कहा वो सबसे पहले सुनेंगे तभी क्या करेंगे, वो उचित रूप से कृष्ण का गुणगान और कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। तो यदि भगवान हरि की इन कथा को कोई सुनता है तो भगवान हरि के प्रति भक्ति का उदय होगा, और उतना ही नहीं बल्कि परीक्षित महाराज कहते हैं तत्पुरुषेच सख्य, उनके जो भक्त हैं उन भक्तों के प्रति श्रवण करने वाले भक्त के हृदय में मैत्री की भावना होगी, प्रेम की भावना होगी, तो फिर ये अपराध आदियों के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा। समस्याएं हमारे बीच में मन मुटाव क्यों है, क्योंकि कृष्ण कथा या कृष्ण का गुणगान भक्तों के संग में आकर हम उचित रूप से या अधिक रूप से नहीं करते। और परीक्षित महाराज कहते हैं आप गले में बहुत प्रकार की माला डालने की अभिलाषा रखते हो, हम वेट ही करते हैं कब अलग अलग मालाएं आ जाए और हमारे गले में पड़े, और कोई माला नहीं पहना है तो फिर बहुत अधिक दुख महसूस होता है, व्याकुल हो उठते हैं, मानो किसी महत्वपूर्ण चीज को हमने खो दिया हो। बल्कि परीक्षित महाराज कहते हैं आपको इतनी मालाएं पहनने की आवश्यकता है तो एक ही हार पहनो, वो क्या है, तदेव हारम, वो हार पहनो। प्रभुपाद अनुवाद करते हैं भगवान के कार्यकलाप जिन्हें सुनना चाहिए और गले में माला के समान रखना चाहिए, इसलिए ये कंठ हमें दिया है कृष्ण का गुणगान करने के लिए। हाँ, तो ये जो कार्यकलाप है जिसका उचित रूप से गुणगान करते रहना चाहिए और उचित रूप से इन कार्यकलापों का हमें श्रवण करना चाहिए। ऐसे परीक्षित महाराज ने जब पोतना के उस लीला को सुना तो उनका एक्साइटमेंट इतना अधिक बढ़ गया और शुकदेव गोस्वामी का एक्साइटमेंट भी इतना अधिक बढ़ गया कि वो केवल तुरंत दूसरा फाइटिंग लीला वर्णन करने लगे। बल्कि पोतना के बाद उनको वर्णन करना चाहिए था कृष्ण का नामकरण आदि, वो सब नहीं किया, वो तुरंत क्या करने लगे, कृष्ण की बाल लीलाएं जिनमें अलग अलग असुरों का वध है उसका वर्णन करने लगे। और ऐसी बाल लीलाएं परीक्षित महाराज कहते हैं कि ऐसी भगवान की जो बाल लीलाएं हैं वो क्या करती है मुझे, श्री कृष्ण बाल लीला मामती लालयती, कि कृष्ण की ये बाल लीलाएं मुझ मेरे हृदय में श्रवण की लालसा उत्पन्न कर रही है। हे शुकदेव गोस्वामी आप क्या करो, जल्दी से जल्दी उनका वर्णन करो। तो वास्तव में ये बाल लीलाएं भौम वृंदावन में है, भगवान का जो आध्यात्मिक जगत है गोलोक वृंदावन, वहां कोई आसुरों का वध या बाल लीला आदि नहीं है। भगवान अपने नित्य धाम के साथ इस जगत में अवतरित होते हैं भौम वृंदावन में अपने नित्य परिकरों के संग में, तो यहाँ विशेष रूप से इन लीलाओं का वो आनंद उठाते हैं। और कृष्ण का एकमेव कारण है इस जगत में अवतरित होने का, और वो है क्रीडार्थम। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान तो क्रीड़ाएं करने के लिए, विशेष लीलाओं का प्राकट्य करने के लिए इस जगत में अवतरित होते हैं। और फिर जैसे उन्होंने परीक्षित महाराज ने ये बोला तो शुकदेव को समय से रहा नहीं गया, पूतना वध के बाद उन्होंने तुरंत ही दो तीन लीलाओं का वर्णन इस अध्याय में किया। एक था शकट भंजन लीला और दूसरा था तृणावर्त लीला और तीसरा भगवान किस प्रकार से अपना विश्व रूप दिखाते हैं, तो इनका वर्णन इस अध्याय में प्राप्त होता है। तो हम कुछ समय में इन दो तीन लीलाओं का वर्णन करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि पूतना का वध भगवान ने किया तीन दिनों के पश्चात, और द्वितीय या तृतीय स्कंद में उद्धव जब कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हुए कहते तो वो कहते हैं कि कृष्ण जब तीन मास के हुए थे तब उन्होंने शकट भंजन लीला की थी। तो जब भगवान अभी तीन महीने के हो गए तो भगवान अभी करवट बदलना उन्होंने शुरू कर दिया था, जिसको भागवतम में कहा गया है उत्थान संस्कार। बल्कि उत्थान संस्कार ये सर्वसाधारण जीव के लिए है, लेकिन कृष्ण के लिए आचार्यगण शब्द यूज करते हैं औत्थानिक उत्सव। उत्थान संस्कार भी एक उत्सव है, लेकिन कृष्ण के लिए शुकदेव गोस्वामी कहते हैं औत्थानिक उत्सव। कृष्ण से संबंधित हर कार्यकलाप क्या है, उत्सव है, फेस्टिवल है। इसलिए वैकुंठ को कहते हैं अखंडित उत्सव। तो जब माता यशोदा ने सोचा कि अभी ये उत्थान संस्कार या औत्थानिक उत्सव मुझे मनाना है, तो उन्होंने उस दिन सारी ब्रज की स्त्रियों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया और उनको मान सम्मान आदि प्रदान किया। और उस दिन विशेष रूप से चंद्रमा का प्राकट्य था और रोहिणी नक्षत्र भी था, जो भगवान जिस दिन प्रकट हुए थे उसका भी विशेष योग था। तो ऐसे दिन ये उत्सव मना रहे थे, अलग अलग ब्राह्मणों को बुलाकर, और कई सारे अलग अलग गवयों को भी बुलाया था जो भगवान की महिमा का वो गान कर रहे थे। और उस दिन माता यशोदा ने सुबह सुबह कृष्ण को स्नान कराया, उनको लाल कलर के वस्त्र आदि पहनाए, सुवर्ण आभूषण उनको पहनाए, गोद में लेकर उनके आंखों में काजल आदि लगाया। और आचार्यगण कहते हैं कि उनको बाघ नख युक्त गले में एक माला उन्होंने पहनाए, और फिर ले जाकर देवताओं को गौओं को ब्राह्मणों को नमस्कार आदि किया, ब्राह्मणों को उचित रूप से वस्त्र भोजन दान दक्षिणा आदि प्रदान किया, और फिर ब्राह्मणों को कहा कि आप मंत्र उच्चारण कीजिए। और वहां माता यशोदा अपने छोटे से बालक को लेकर बैठ गए। जैसे बालक को लेकर बैठ गए तो कृष्ण इतना आनंदित नहीं होते उन मंत्रों का उच्चारण सुनकर, उनको नींद आ जाती है। जैसे ही नींद आती है कृष्ण जैसे सो रहे थे और गोद में थे, माता यशोदा को लगा कि कृष्ण के लिए थोड़ी कठिनाई होगी, तो माता यशोदा तुरंत उन्हें ले जाती है और आंगन में ही एक स्थान में शकटता छकड़ा या बैलगाड़ी, और बैलगाड़ी के नीचे एक पालना हो सकता है मैं भी, जहां माता यशोदा ने जाकर कृष्ण को सही रूप से सुला दिया। और माता यशोदा आकर फिर अलग अलग गोपों का गोपियों का स्वागत आदि करने में इस उत्सव में मग्न हो गए। जैसे ही कृष्ण सो गए और यहाँ धूमधाम उत्सव हो रहा है, तो अचानक कृष्ण जोर जोर से क्रंदन करने लगते हैं। क्रंदन करते हैं और जैसे भगवान क्रंदन करने लगे, देखा कोई सुन ही नहीं रहा है उन्हें, भगवान की रोने की आवाज वास्तव में ओम ओम की आवाज है। तो भगवान जब रो रहे थे आवाज भी उन्होंने बढ़ा दिया, लेकिन देखा कोई मुझसे आकर्षित नहीं है। अब भगवान भी अपनी ओर क्या चाहते हैं, सबका आकर्षण चाहते हैं, जिनके कारण हमारे अंदर भी वो सूक्ष्म गुण है। हम भी क्या चाहते हैं, सारे जगत का अपनी ओर आकर्षण चाहते हैं, हाँ स्पॉटलाइट में आना चाहते हैं, लाइट आ जाए किसके ऊपर, मेरे ऊपर। तो ऐसे कृष्ण के इस पूरे उत्सव में कृष्ण ने कहा सारा उत्सव मेरे लिए, लेकिन मुझे एक छाया में अंधकार में रखा है पालने में एक बैलगाड़ी के नीचे। तो ऐसे कृष्ण जब सोच ही रहे थे तो उन्होंने सोचा भी हाँ एक में दो काम करना, एक तीर से दो निशान। तो भगवान ने एक तीर से दो निशान, एक तो सब यशोदा का अटेंशन, दूसरा शकट के ऊपर जो आसुर था शक्टासुर, आचार्यगण कहते हैं ऐसा शक्टासुर देह रहित था, जिसने जिस प्रकार से जो भूत प्रेत होते हैं वो स्थूल शरीर से रहित होते हैं, वो किसी दूसरे का शरीर के सहारा लेते हैं और अपना कार्य करते हैं, उसी प्रकार से इस आसुर ने क्या किया, शकट का सहारा लिया और वो शकटासुर कहलाया। तो ऐसा शकटासुर भगवान ने सोचा ये तो खिलौना नंबर दो है जो किसने भेजा है, कंस ने। पहला खिलौना था ये पूतना, उनको तो उन्होंने मार दिया, और अभी ये थे शकटासुर। तो भगवान ने सोचा कि इनको मैं इनका वध करना चाहता हूं और दूसरा माता यशोदा का आकर्षण भी चाहता हूं। तो ऐसे भगवान ने अपने चरण कमलों को क्या किया, जस्ट ऐसे बच्चा पालने में है पांव ऊपर कर लेता है, जैसे ऊपर किया उसके स्पर्श मात्र से, बल्कि ब्रह्मांड पुराण में वर्णन आता है कि शक्टासुर वो जो आसुर जब उस शकट के ऊपर बैठा तो उसके जो पैये हैं नीचे धस गए, जिसके कारण उसका स्पर्श किसे हो रहा था, कृष्ण के चरणों से, उतना ही काफी था उस आसुर का वध होने के लिए। और वो आसुर का वध हो जाता है और वो सारा शकट हाँ टूट फूट कर गिर जाता है, उसके ऊपर का सारा सामान टूटता है गिर जाता है, और बड़ी सी आवाज होती है। अभी ये आवाज किसको सुनाई दी, सारे उस उत्सव में जितने भी भाग लेने वाले हैं सब हाँ सबको आवाज सुनाई देती है, सब दौड़ने लगते हैं यशोदा नंद महाराज आदि, और आते हैं अपने मुंह में उंगली डाल के देखते हैं, अहो आश्चर्य क्या हो गया, ये छोटे से बालक ने इतने बड़े शकट को तोड़ दिया, कैसे संभव है। तो इन्होंने लगा कि कुछ भूत प्रेत पिशाच आदि हो सकता है। तो छोटे से बच्चे खड़े थे बालकगण, उन्होंने कहा ये अद्भुत कार्य किसने किया है, इस बाल कृष्ण ने किया है, किसी का विश्वास नहीं हो रहा था। तो माता यशोदा आदि गोद में लिया, नंद महाराज आदि उन्होंने कृष्ण को नजदीक लिया और बैठे, यज्ञ हवन आदि हुए और क्वालिफाइड ब्राह्मणों को बुलाया, उनके द्वारा स्तुति वाचन आदि हुआ। तो इस प्रकार से भगवान इस शक्टासुर का वध करते हैं, और भगवान जब एग्जैक्टली एक साल के हो जाते हैं पहले जन्माष्टमी, उस समय कृष्ण को लगा कुछ रोमांचकारी होना चाहिए, मेरा बर्थडे है, कृष्ण सोच ही रहे थे हाँ कुछ विशेष होना चाहिए, जन्माष्टमी में ऐसे कुछ खाली खाली नहीं, सबको याद रहनी चाहिए जन्माष्टमी। तो ऐसे भगवान कृष्ण ने सोचा कुछ अद्भुत करके दिखाता हूं। तो माता यशोदा ने उनको सुबह सुबह स्नान आदि करके बड़े आनंद से लालन पालन कर रही थी, गोद में उठाकर उनको स्तनपान करा रहे थे, और भगवान स्तनपान करते हुए सोच ही रहे थे कि अभी आसपास कुछ आसुर आने की संभावना है। भगवान को पता ही चला गया तृणावर्जी आ रहे हैं हाँ। तो ऐसे भगवान सोच ही रहे थे, माता यशोदा उनको दुलार रहे थे, कभी हाथ में लेकर ऐसे ऊपर उड़ा रहे थे। तो भगवान ने सोचा मैं तो बादल का स्पर्श करना चाहता हूं, तुम क्या मुझे इतना धीरे धीरे यहां तक ही उड़ा रही हो। तो उन्होंने सोचा अभी ऊपर ले जाने के लिए कौन आ रहा है, तृणावर। तो ऐसे भगवान ने सोचा अभी माता यशोदा को अलग कर लेता हूं, आसुर और मैं और कोई नहीं बीच में, कोई ब्रजवासियों को क्षति नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे कृष्ण ने
सुखदेव गोस्वामी कहते हैं गिरी के समान कृष्ण ने अपना भार कर दिया, इतने हेवी हो गए कि मानो कोई पर्वत ही उनके हाथ में है यशोदा के। यशोदा माता ने लगा अरे क्या हो गया, ये बालक का रोज केजी वेट उतना ही रहता है, रोज ही तो इसको उठाती हूँ, आज इसका भार कुछ अधिक प्रतीत हो रहा है। तो फिर उन्होंने इतना भारी लग रहा था कि उन्होंने उनको रख दिया आंगन में, और माता यशोदा ग्रह कार्य करने के लिए अपने ग्रह में प्रविष्ट हो जाती हैं। फिर कृष्ण वहां सोचते हैं कि अभी नजदीकी आ रहे हैं तृणावर्त, हाँ तो तृणावर्त जी, तृणावर्त एक बवंडर के रूप में थे, हाँ तो वो सारे ब्रज में बड़ी धूल उड़ाते हुए, तृणावर्त का आगमन होता है, सारे ब्रजवासियों की आंखें बंद हो जाती है धूल से, और उन महानंद महाराज के आंगन में जैसे तृणावर्त पहुंचता है कृष्ण को उठा लेता है और उठाकर आकाश में ले जाता है। तो कृष्ण को तो बड़ा आनंद आ रहा था, वो तो पहले से ही सोच रहे थे, और अभी जैसे वो ऊपर गए तो कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने सोचा कृष्ण को यहां से पटक देता हूं, लेकिन कृष्ण ने उनकी गर्दन पकड़ ली थी। कृष्ण यदि किसी व्यक्ति को पकड़ते हैं वो सरलता से क्या नहीं करते, छोड़ते नहीं है, तो ऐसे कृष्ण ने जैसे उनकी गर्दन पकड़ी तो अभी वो सरलता से छोड़ नहीं रहे थे। पूतना के साथ वैसे ही हुआ, जैसे हम भोग लगाते हैं तो भोग लगाते समय हम घंटी बजाते हैं ना और वेट करते कि चलो 5-10 मिनट तो भोग लगता रहे, कम से कम 15 मिनट। तो अभी पूतना दूध भोग लगा रहे थे और कृष्ण ने अभी पीना शुरू ही किया था तो वो हटा रहे थे। भगवान कह रहे थे अरे मुझे भोग तो स्वीकार करने दो, थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट, भगवान छोड़ ही नहीं रहे थे। लेकिन यहां तृणावर्त को भगवान ने गला पकड़ लिया, क्या पकड़ लिया, गला, और अभी वो छोड़ेंगे नहीं, और उनका गला इतना जोर से पकड़ा कि उनकी आंखें बाहर आने लगी, रुंध हो गया गला और मृत होकर तृणावर्त गिर पड़ते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ऐसे तृणावर्त अहंकार का प्रतीक है। भगवत भक्ति में भक्त आने के बाद भी जब उसके हृदय में अहंकार का उदय हो जाता है कृष्ण को सहन नहीं होता। गोपी गीत में कृष्ण कहते गोपियों को कि मैं सब सहन कर सकता हूं भक्तों का, लेकिन उनका जो अहंकार है वो सहन नहीं होता। भगवान ने कितने कितने लोगों का अहंकार चूर्ण किया है, ब्रह्मा इंद्रा उनके अर्जुन का भी, कई सारे डिवोटीज का, गोपियों को कहते हैं मैं तो अहंकार का हनन करता हूं। तो ऐसे कृष्णा क्या करते हैं, अहंकारी भक्त का गला पकड़ लेते हैं, क्या पकड़ लेते हैं, गला, छोड़ते नहीं है, उसको पूर्ण रूप से नीचे गिरा देते हैं, तब उसे पता चलता है अपने अस्तित्व का, समझ में आता है हाँ कि मैं क्या हूं, जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास, मेरा साइज तो बालाग्रह शतभागश शतधा कल्पितश्च, मेरा साइज तो उतना है जो एक बाल के अग्रभाग का 10,000वां क्या हिस्सा। तो इस प्रकार से भगवान तृणावर्त का वध करते हैं, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इन लीलाओं का जब वर्णन करते हैं तो उसमें कहते हैं यही कृष्ण की सर्वोच्चता है, यही कृष्ण की परम पुरुषता है, यही कृष्ण की भगवत्ता है। वो कहते हैं रदत शद बलम व्यक्तम पूतना स्तन चूषणे शकटोंग्री बलम पान्यो तृणावर्ते वधे बलम। तो वो कहते हैं यहां हम देख सकते हैं इन तीन लीलाओं से पूतना शक्टासुर और तृणावर्त भगवान के बाकी अवतारों को कुछ करना है तो उनके अपने शरीर आदि का विस्तार करना होता है। वामन देव को जब 3 पग भूमि चाहिए, भले महाराज ने कहा मैं रेडी हूं देने के लिए, भगवान ने जब 1 पग डाला तो उनको अपना पाव बड़ा लंबा करना पड़ा, विस्तार। लेकिन यहां कृष्ण को अपना पाव शक्टासुर को मारने के लिए विस्तार करने की आवश्यकता नहीं पड़े। और वो कहते नरसिंह देव को हिरण्यकशिपु को मारने के लिए कई सारे अपना शरीर रूप और कितनी चीजें बदलनी पड़े, लेकिन कृष्ण को इन असुरों को मारने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा। इसी कारण से कृष्ण क्या है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर स्थापित करते हैं। और वो कहते विशेषता यही है, वो कहते हैं देखो कृष्ण के अंग इतने सुकोमल हैं, मानो नए नए पल्लव अंकुरित हो रहे हो। और ऐसे सबसे पहले असुर को मारा तो अपने शरीर का जो सबसे कोमल अंग था ओंठ, उसके स्पर्श से काम तमाम, पहले उनकी हत्या, पूतना का वध, और दूसरा शकटासुर का वध कैसे, अपने चरण कमलों से जो इतने मुलायम हैं, और तीसरा जत्रणावर्त का वध है वो अपने कर कमलों से, इतने मुलायम है मृदु अंगों से इन आसुरों का वध किया। तो इस प्रकार से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कृष्ण अपने इस कार्यकलाप से हमें समझाते हैं कि वो क्या है, परम पुरुष है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो आज के श्लोक में परीक्षित महाराज वास्तव में अपनी अनुभूति हम सबसे शेयर कर रहे हैं कि ये कृष्ण कथा कितनी ग्लोरियस है, और एक भक्तों को वास्तव में इस कृष्ण कथा रूपी नाव का आश्रय लेना चाहिए और श्रवण करते रहना चाहिए। भक्तों के माध्यम से श्रवण करते रहने से ही क्या होगा, हमारी शुद्धि संभव है, जिस प्रकार से परीक्षित महाराज यहाँ बताते हैं। और भगवान के प्रति स्वाभाविक रूप से भक्ति जागृत होगी, और दूसरा भगवान के भक्तों के प्रति मैत्री प्रेम का भावना हमारे हृदय में उदित होगा, जो भक्ति संपादन करने के लिए परम आवश्यक है। भक्तिस्तु भगवत भक्ता संगेन परिजायते, भक्ति तो भगवान के भक्तों के संग में ही संपादित हो सकती है, और कोई कार्य नहीं है। इसलिए प्रेम विवर्त में जगदानंद पंडित कहते हैं मैं किसी चीज की आकांक्षा करता हूं तो वही यही है, भक्तों के संग में भक्ति संपादन करो, और उनके संग में क्या करो, भगवान के नामों का उच्चारण करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो मैं यहाँ विराम देता हूँ, हरे कृष्णा। आपकी कोई समीक्षा है?
तो सर्वसाक्षी का नाम है।